कैट फाइट। अब ये सुनते ही वो मैनेजर एक पल के लिए शांत हुआ और अगले ही पल वो बेपरवाह होकर जोरों से हंसने लगा। उसके साथ साथ बाकी के स्टाफ भी हंसने लगे। अब आगे और हंसते हुए बेपरवाही से बोला, ऐसा कैसे हो सकता है, एक बिलियनर आदमी एक मामूली सेक्रेटरी को अपनी बीवी बनाएगा? क्या तुम हमें बेवकूफ समझती हो एंजल डिसूजा? मैं तुम्हें अच्छी तरह से जानता हूँ और तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूँ, जो सेक्रेटरी अब मिस्टर अविनाश ने अपने ऑफिस में रखी है वो मेरी ही रिलेटिव है, समझी तुम? ये सुनकर एंजल थोड़ा चौंक गई थी। इससे पहले वो कुछ कह पाती, तब तक कुछ गार्ड्स ने आकर एंजल को भी पकड़ लिया। अब एंजल और आस्था दोनों एक दूसरे की ओर बेबसी से देखने लगी। वहीं एंजल आस्था से माफ़ी मांगते हुए अटकती हुई आवाज़ बोली, गोरी मुझे माफ़ कर देना, मुझे नहीं पता था कि ये मैनेजर इस तरह का बर्ताव करेगा। मैं तो सिर्फ तुम्हें घुमाना फिराना चाहती थी और हम दोनों का दिन यादगार बनाना चाहती थी, लेकिन अब तो हम दोनों ही फालतू की झंझट में फंस गए। तुम फिक्र मत करो, मैं अभी अविनाश को फ़ोन करके यहाँ बुलाती हूँ। जैसे ही एंजल ने ये कहा, वैसे ही मैनेजर ने तुरंत एंजल का फ़ोन छीन लिया और सख्त लहजे में बोला, मैं अच्छी तरह से समझ रहा हूँ कि तुम क्या करने की कोशिश कर रही हो। मेरी एक बात कान खोल कर सुन लो, तुम्हारी ये ट्रिक यहाँ काम नहीं करेगी। मैं तुम जैसी जालसाज लड़कियों को अच्छी तरह से जानता हूँ। तुम ज़रूर यहाँ किसी तरह का नाटक कर रही हो। तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम मुझे साफ साफ बता दो कि तुम्हारा यहाँ कॉम्प्लेक्स में आने का क्या मकसद है, क्योंकि भले ही तुम अब सेक्रेटरी नहीं रही हो और तुम्हारे पास इतने पैसे भी नहीं होंगे कि तुम यहाँ का कोई सामान भी खरीद सको, तो ज़रूर तुम अविनाश सर से बदला लेने के लिए यहाँ आई हो, क्योंकि उन्होंने तुम्हें नौकरी से निकाल दिया। इसलिए तुम यहाँ कुछ नुकसान करके या कोई बम वगैरह रखकर इस एरिया को बर्बाद करना चाहती हो। मैं तुम्हारी चालाकी अच्छी तरह से समझ रहा हूँ, लेकिन मेरे रहते ये सब बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा। एंजल डिसूजा, मेरी बात कान खोल कर सुन लो। मैनेजर की ये बातें सुनकर एंजल को झटका सा लगा, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ समझा पाती, आस्था का गुस्सा अब अपने काबू से बाहर हो गया। आस्था मैनेजर को घूरते हुए बेबाकी से चीखते हुए बोली, अपनी हद में रहो मैनेजर, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी भाभी से इस तरह बदतमीजी करने की? ये कहकर आस्था ने तेजी से सिक्योरिटी गार्ड से हाथ छुड़ा लिया। आखिरकार अरमान सिंघानिया ने अपनी बीवी को मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग दी थी, जिससे आस्था आसानी से इन लोगों का मुकाबला कर सकती थी। आस्था ने तुरंत ही गार्ड से खुद को छुड़ाया और फिर सन करके अचानक तमाचे की आवाज़ वहां सुनाई देती है, क्योंकि आस्था ने मैनेजर के मुंह पर एक झन्नाटेदार तमाचा जड़ दिया था। मैनेजर की बेइज्जती सबके सामने हो चुकी थी और वो ये अपमान सह नहीं पा रहा था। उसने तुरंत अपने फीमेल स्टाफ को इशारा किया और पुलिस को कॉल करने के लिए कहा। दूसरी ओर अविनाश इस वक्त अपने ऑफिस का काम संभाल रहा था। इतने दिनों के बाद ऑफिस आने के कारण उसके पास साइन करने और डिटेल्स चेक करने के लिए ढेरों फाइलें थीं। वो पूरी तरह से बिजी था और उसे वहां हो रही घटनाओं का बिल्कुल अंदाजा नहीं था। उसी समय शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में पुलिस आने की खबर मिलते ही अविनाश की नई सेक्रेटरी रोजी, जो कि मैनेजर की दूर की रिश्तेदार थी, उसके पास कॉल आया। उसने कॉल रिसीव किया तो सामने से मैनेजर ने उसे बताया, दो लड़कियां यहां आई हुई हैं, जिनमें से एक तुम्हारे सर की पुरानी सेक्रेटरी है और वो यहां आकर हंगामा कर रही हैं। वो जरूर चोरी के इरादे से यहां आई हैं। हम उन्हें पकड़ चुके हैं और पुलिस के हवाले करने वाले हैं। ये सुनकर रोजी के होठों पर शैतानी भरी मुस्कान आ गई और अगले ही पल उसने उस मैनेजर को ऑर्डर दिया, फौरन उन्हें पुलिस के हवाले कर दो। असल में रोजी को एंजल से शुरू से ही चिढ़ थी, क्योंकि एंजल अविनाश की सेक्रेटरी थी और अविनाश की पर्सनैलिटी हर किसी को आकर्षित करती थी। अब एंजल की गैर मौजूदगी में रोजी को उसकी जगह मिल चुकी थी और जब उसने सुना कि एंजल शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में हंगामा कर रही है, तो उसके पास अब एंजल को नीचा दिखाने का सुनहरा मौका आ चुका था। इसीलिए उसने अविनाश को कहीं और जाने का बहाना देकर ऑफिस से निकलकर सीधा कॉम्प्लेक्स की ओर रवाना हो गई। इधर आस्था ने एक बार फिर मैनेजर के मुंह पर बेपरवाही से तमाचा जड़ दिया। अब मैनेजर पूरी तरह से गुस्से में आग बबूला हो उठा था, क्योंकि पहले एंजल और फिर आस्था ने उसके ऊपर हाथ उठा दिया था। उसके चेहरे का रंग एकदम से बदलने लगा और वो जोर से चिल्लाया, तुम लोगों ने बहुत बड़ी गलती की है मुझ पर हाथ उठाकर, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। उसने अपने गार्ड्स को ऑर्डर दिया, इन दोनों लड़कियों को बुरी तरह से मारो और फिर पुलिस के हवाले कर दो। लेकिन आस्था भला कैसे चुप रह सकती, वो एंजल पर किसी का हाथ उठाना बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। उसने तुरंत एक्शन लिया और गार्ड्स को जोरदार तरीके से धूल चटाना शुरू कर दिया। उसकी फाइट स्किल्स देखकर एंजल हैरान रह गई और एक्साइटेड होकर बोली, ओ वाओ डियर, मैंने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि तुम इस तरह फाइटिंग कर सकती हो। असल में आस्था को मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग अरमान ने बहुत पहले ही दे दी थी और टाइगर और मारिया से उसने बेहतरीन डिफेंस स्किल सीखी थी, इसीलिए उसने जल्दी ही सभी गार्ड्स को परास्त कर दिया था। मैनेजर का गुस्सा अभी भी शांत नहीं हुआ था। वो नफरत भरी नजरों से आस्था और एंजल को घूर रहा था, लेकिन जैसे ही आस्था उसकी तरफ बढ़ी, पीछे से एक लड़की की आवाज़ सुनाई दी, ये सब क्या हो रहा है यहाँ? ऊंची हील्स और छोटे कपड़ों में रोजी वहां मटकती हुई आ रही थी। उसे वहां देखकर एंजल थोड़ी हैरान हुई और वो उसकी तरफ देखते हुए एकदम से बोली, रोजी तुम यहां क्या कर रही हो और अविनाश कहां है? क्या उसे मैनेजर ने नहीं बताया कि उसने हमारे साथ कैसी बदतमीजी की है? एंजल के मुंह से अविनाश का नाम सुनते ही रोजी का चेहरा तमतमा गया। वो तुरंत आगे बढ़ी और बिना किसी वार्निंग के एंजल के मुंह पर तमाचा मारते हुए बोली, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे बॉस का नाम अपनी गंदी जबान से लेने की? अब तुम उनके लिए काम नहीं करती हो, अब मैं उनकी सेक्रेटरी हूँ। असल में रोजी को भी नहीं पता था कि एंजल को नौकरी से क्यों निकाला गया था। उसे तो यही लग रहा था कि जरूर एंजल ने कोई गलती कर दी होगी, इसलिए उसे जॉब से निकाला गया है। वैसे एंजल हमेशा से अविनाश के आगे पीछे रहा करती थी और ये देखकर रोजी अंदर ही अंदर जलन से भर जाया करती थी, लेकिन वो उस वक्त चाहकर भी कुछ कर नहीं सकती थी क्योंकि अविनाश ने अपनी मर्जी से एंजल को अपनी सेक्रेटरी बनाया था। और जब रोजी को खुद सेक्रेटरी बनने का मौका मिला तो वो पूरी तरह हवा में उड़ने लगी और अविनाश को पाने के सपने देखने लगी थी। अगले ही पल एंजल रोजी को सख्त नजरों से घूरते हुए चीखी, अगर अविनाश को ये पता चल गया तो वो तुझे नहीं छोड़ेंगे। एंजल को अविनाश का नाम लेते हुए सुनकर रोजी आग बबूला हो गई और तिलमिलाते हुए बोली, अपनी घटिया जुबान से मेरे बॉस का नाम लेने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? एक बात याद रखना, अविनाश सर अब अगर किसी के होंगे तो सिर्फ मेरे होंगे। उन्होंने तुझे अपनी जिंदगी से कब का निकाल फेंका है, और वैसे भी अगर तुम इस कॉम्प्लेक्स में आई हो तो जरूर कुछ ना कुछ बड़ा करने का सोच रही होंगी। अभी भी मौका है, बता दो, इससे पहले कि मैं सर को तुम्हारी शिकायत कर दूं। रोजी की बकवास सुनते ही एंजल ने मुट्ठियां भींची और गुस्से से भरी आंखों से उसे घूरा। एंजल ने सिचुएशन को भांपते हुए उसने खुद के इमोशंस को संभाला। फिर एंजल ने मन में सोचा, एक तो ये बेवकूफ मैनेजर उसे उसका फोन नहीं दे रहा है ताकि वो अविनाश से कॉन्टैक्ट कर सके, दूसरा उसने खुद अविनाश की सिक्योरिटी टीम को मना किया था कि वो कॉम्प्लेक्स के बाहर खड़े रहकर उनका इंतजार करें और जब वो दोनों वापस बाहर आएंगे तभी वो उनका पीछा करें।
अब एंजल मन ही मन ये सोचते हुए पछता रहे थे। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि वो आस्था को पहली बार इस तरह से अपने साथ बाहर लेकर घूमने आएगी तो उसके साथ इतना बड़ा तमाशा हो जाएगा। इस वक्त वो गुस्से से पागल हुए जा रहे थे। वो समझ नहीं पा रही थी कि आखिर वो करे तो करे क्या और वो इस सिचुएशन से कैसे बाहर निकले। उसने एक गहरी सांस ली, फिर रोजी की ओर जलती हुई नज़रों से देखा और बात को संभालते हुए बोली, देखो तुम मुझे पसंद नहीं करती हो, लेकिन मेरी एक बात ध्यान से सुनो, ये जो लड़की तुम सामने देख रही हो ना, ये अविनाश की बहन है, समझे तुम? और मेरा उससे क्या रिश्ता है इसके बारे में मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी, लेकिन फिलहाल तुम मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम खुद से थोड़ा सा याद करते हुए सोचो कि ये अविनाश की वही बहन है जिसे अविनाश बरसों से ढूंढ रहा था। जैसे ही एंजल ने कॉन्फिडेंस के साथ ये बताया, वैसे ही रोजी एक पल के लिए सच में सोच में पड़ गई, लेकिन अगले ही पल वो आस्था को ऊपर से नीचे तक देखते हुए बुरा सा मुंह बनाकर बोली, तुम्हें क्या लगता है कि तुम इस तरह की उल्टी सीधी बातें करोगी तो मैं तुम्हारी बातों पर यकीन कर लूंगी? जी नहीं, मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि तुम मुझे बहलाने की कोशिश कर रही हो, पर तुम मुझे इतनी आसानी से अपनी बातों में नहीं फंसा सकती। और ये लड़की सर की बहन कहाँ से लगती है? सर की बहन कोई बहनजी टाइप लड़की होगी और ये तो वैसी भी नहीं लगती। उसकी बात सुनते ही आस्था ने गुस्से भरी आंखों से रोजी को देखा और नाखुश होते हुए उसे फटकारा, देखो मेरी भाभी से इस तरह बात करने का तुम्हें कोई हक नहीं है, और रही बात कि मैं अविनाश भैया की बहन हूँ या नहीं और एंजल भाभी मेरी भाभी है या नहीं, इससे तुम्हें कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। तुम फटाफट भैया को फ़ोन करो, वो यहाँ आएंगे और तुम्हें सच्चाई खुद बखुद पता चल जाएगी। आस्था के मुँह से ये सुनकर रोजी के तन बदन में और आग लग गई, क्योंकि आस्था ने एंजल को अपनी भाभी कहा था। अब तो उसे लगने लगा कि ज़रूर एंजल नाटक कर रही है, क्योंकि अविनाश के पीछे एंजल किस तरह पागल थी ये बात रोजी से छुपी नहीं थी। उसे लगा कि ये लड़की एंजल के साथ मिलकर नाटक कर रही है। रोजी आस्था को धमकाते हुए गुस्से से फट पड़ी, अपनी हद में रहो, और तुम्हें क्या लगता है कि तुम जैसी मामूली लड़की के लिए अविनाश सर यहाँ चलकर आएंगे? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? ये क्या उल्टी सीधी बातें किए जा रही हो? एंजल और आस्था ने जब उसकी बातें सुनी तो दोनों ने एक साथ अपना सर पकड़ लिया। वहीं आस्था के चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कान आ गई और वो एंजल की ओर देखकर मजाकिया अंदाज में बोली, वैसे भाभी मानना पड़ेगा, आप मुझे यहाँ अच्छी यादें देने लाई थी, लेकिन ऐसा लग रहा है अब तो मैं कुछ अजीब यादें ही लेकर जाऊंगी। जैसे ही आस्था ने ये कहा तो ये सुनकर अगले ही पल एंजल का चेहरा उतर गया और वो पूरी तरह मायूस हो गई थी, लेकिन आस्था ने आगे बढ़कर एंजल को गले से लगा लिया और कोमलता से बोली, आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है भाभी, मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि आपके हाथ में कुछ नहीं है, और मुझे समझ में नहीं आ रहा कि यहाँ पर फॉरेन के लोगों में भी जलन और गुस्सा ये सब तमाशा चलता है। रियली मैं शॉक्ड हूँ ये सब देखकर। अब आस्था और एंजल बेफिक्री से आपस में बातें करने लगी तो मैनेजर और रोजी एक दूसरे को आश्चर्य से देखने लगे। तब कुछ सोचते हुए मैनेजर तुरंत रोजी के पास आकर बोला, सिस्टर, तुम्हारे कहने पर मैंने पुलिस को भी बुला लिया है, अभी पुलिस आने वाली है। लेकिन ये दोनों कितनी कॉन्फिडेंस से बातें कर रही हैं, कहीं इनकी बातों में कोई सच्चाई तो नहीं। ये सुनकर रोजी बिफर गई और मैनेजर की ओर देखकर एटीट्यूड से बोली, ब्रो तुम्हें जैसा कहा गया है वैसा करो। मैंने कहा ना, ये लड़की अविनाश सर की कुछ भी नहीं लगती, ये सिर्फ बदला ले रही है क्योंकि इसे सेक्रेटरी की नौकरी से निकाल दिया गया है। परेशान मत हो, एक काम करो, फटाफट से पुलिस को बुलाओ और इन्हें पुलिस के हवाले करो, पुलिस सच निकाल लेगी। अब रोजी पूरी तरह एंजल को नीचा दिखाने और पुलिस के हवाले करने के लिए तैयार थी। वहीं एंजल ने गहरी सांस ली और तेज कदमों से रिसेप्शन की ओर भागी। रोजी जोर से चिल्लाई, जाकर उस लड़की को रोको, वो इस तरह भागने नहीं चाहिए। लेकिन तब तक एंजल तेजी से पहुंचकर इमरजेंसी कॉल पर सीधे अविनाश को फोन कर चुकी थी और उसने अविनाश को फोन पर सिर्फ इतना कहा, हेल्प। लेकिन तभी मैनेजर ने आकर फोन काट दिया और उसने एंजल को उंगली दिखाते हुए उसे धमकाया, ये क्या बदतमीजी है, तुम्हें क्या लगता है तुम इस तरह की कोई हरकत करोगी तो क्या हम तुमसे डर जाएंगे? ये तुम्हारी सबसे बड़ी गलतफहमी है मिस एंजल, और तुम्हें कुछ समझ नहीं आता है क्या जो तुम इस तरह से चोरी चकारी पर उतर आई हो? हाँ, अगर तुम्हें किसी तरह की कोई मदद ही चाहिए थी तो तुम मुझसे भी तो कह सकती थी। कहीं ना कहीं वो मैनेजर बड़ी भद्दी नजरों से एंजल को ऊपर से लेकर नीचे तक एकटक देख रहा था। वहीं दूसरी ओर वही आस्था, जिसके हाथों को पूरी तरह से सिक्योरिटी गार्ड ने पकड़ा हुआ था, उसका गुस्सा बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा था। वो सपने में भी नहीं सोच सकती थी कि उसके साथ इस तरह का बर्ताव होगा। सिर्फ उसके पहनावे को लेकर, उसके कपड़ों को लेकर लोगों ने वहां उसे इस तरह जज करना शुरू दिया था। आस्था को अब बहुत ज्यादा चिंता हो रही थी। वही मैनेजर एंजल को बेशर्मी से घूरते हुए उसके और करीब चला आया था। अगले ही पल वो आस्था और एंजल को देखकर भड़कते हुए बोला, तुम दोनों ने आज पूरी तरह से हद पार कर दी। क्या तुम लोगों को नहीं पता कि यहाँ पर इस तरह से इतनी आसानी से चोरी नहीं की जा सकती है? या फिर तुम्हारा कोई और इरादा था अविनाश सर के एरिया को बर्बाद करने का? कहीं ना कहीं वो मैनेजर अपना ही कुछ अनुमान लगा रहा था। वो ना तो आस्था की कोई बात सुनने के लिए तैयार था और ना ही एंजल की। वही रोजी मुस्कुराकर एंजल को लगातार कड़वाहट से देख रही थी, क्योंकि कहीं ना कहीं उसकी भड़ास निकालने का मौका जो उसके हाथ था, और वो अपना ये मौका हाथ से नहीं जाने देना चाहती थी। उसने अपने भाई को घूरते हुए अगले ही पल कहा, ब्रदर अगर ये लड़की एक बार मेरे सामने झुककर नाक रगड़ते हुए मुझसे माफी मांग लेती है तो मैं इन दोनों लड़कियों को यहाँ से जाने दे सकती हूँ, और मैं इन्हें पुलिस के हवाले भी नहीं करूंगी बल्कि छोड़ दूंगी। अब रोजी की बात सुनकर वो मैनेजर घटिया तरीके से मुस्कुराया और एंजल को देखकर फट पड़ा, तुम्हें सुनाई दिया मेरी बहन ने क्या कहा है? अगर तुम यहाँ से इस लड़की को सही सलामत वापस लेकर जाना चाहती हो तो तुम मेरे सामने झुको और अपनी नाक रगड़ो।